हफ्ते भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे में हाजिर हूं, स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी का नमस्कार। पेश है सुनो दिल से। भारतीय क्रिकेट में मची खलबली थमने का नाम नहीं ले रही। रेनबो नेशन में टीम इंडिया ऐतिहासिक जीत का रंग बिखेरेगी, इस उम्मीद के साथ शुरू हुआ साउथ अफ्रीका का दौरा आखिर बदरंग साबित हुआ। पहले टेस्ट सीरीज गंवाई और फिर वनडे सीरीज में तथाकथित दोयम दर्जे के मेजबान ने दुनिया की सबसे मजबूत टीम कही जाने वाली भारत को पटखनी दे दी। महज 6 महीनों में कितना कुछ हो गया, कोच और कप्तान क्या बदला, इंडियन टीम की चाल ही बदल गई। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक सदमे की तरह है और समझ से परे भी कि मजबूत बेंच स्ट्रेंथ वाली टीम सिर्फ कोच और कप्तान के बदलने से कैसे एक झटके में कमजोर हो सकती है। बड़ी बात यह कि भारतीय टीम को बेचारगी की हद तक दक्षिण अफ्रीका की वो टीम ले आई जो एनरिक नोकिया, कगिसो रबाडा और कुछ हद तक तबरेज शमसी के बिना खेल रही थी। अफसोस ये कि टेस्ट सीरीज में पराजय से भारत ने सबक नहीं लिया और दूसरे वनडे में मेजबान ने सिर्फ 3 विकेट पर 288 रन का टारगेट चेज कर दिया। भारतीय गेंदबाज लाचार और बेबस नजर आए। भुवनेश्वर कुमार अपना पैनापन खो चुके हैं, बिना विकेट सिर्फ 8 ओवर में उन्होंने 67 रन दे डाले। रविचंद्रन अश्विन की धाक भी न चली और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ भी जमकर हल्ला बोला। अगर गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पाएंगे तो जाहिर है विकेट पर टिकने वाला बल्लेबाज आक्रामक होगा ही। इतना ही नहीं, तीसरे वनडे में अकेले क्विंटन डी कॉक पूरी टीम पर भारी पड़े। भारत का कोई भी स्लॉट परमानेंट कामयाब नहीं रहा, कभी ओपनिंग तो कभी मिडल ऑर्डर और आमतौर पर चलने वाले पुछल्ले बल्लेबाजों ने भी निराश ही किया। भारतीय मान्यता प्राप्त बल्लेबाज बीच बीच में तो बड़ी पारी खेलते रहे लेकिन निरंतरता नहीं दिखा सके। सीरीज के टॉप 2 बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और वेंडर ड्यूसे रहे। प्रसिद्ध कृष्णा एक बार चमके तो बुमराह का प्रदर्शन औसत रहा। अश्विन को सीरीज में 1 विकेट मिला तो भुवनेश्वर न सिर्फ खर्चीले साबित हुए बल्कि विकेटों का खाता भी न खोल पाए। अंतिम वनडे में दीपक चहर का जज्बा काबिले तारीफ था। दीपक ने न सिर्फ 2 विकेट निकाले बल्कि अर्धशतक भी ठोक कर अपनी उपयोगिता बखूबी साबित की। भारत के लिए हाल फिलहाल एक और समस्या नजर आ रही है, वो है विपक्षी सलामी बल्लेबाजों का टिकना। 2020 से यह सिलसिला कई बार हुआ है। शुरुआती विकेट निकालने की नाकामी से भारत को बचना होगा और शुरुआत पूरी आक्रामकता के साथ करनी होगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह से भारत का सूपड़ा साफ हुआ उसके बाद स्पिनर्स की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल और जयंत यादव कुल मिलाकर 59 ओवर गेंदबाजी करने के बाद भी सिर्फ 3 ही विकेट निकाल पाए। कोच राहुल द्रविड़ ने भी माना था कि मध्य के ओवरों में टीम पीछे रह गई, लेकिन अब चूंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज घरेलू मैदान पर होगी वही स्पिनर्स साउथ अफ्रीका में हुए नुकसान की भरपाई कर लेंगे। वेस्टइंडीज के साथ 6 फरवरी से शुरू हो रही सीरीज के लिए दोनों ही टीमें घोषित कर दी गई हैं। ये सीरीज 3 वनडे मैचों और इतने ही T20 मुकाबलों के लिए होगी। रोहित शर्मा फिट हैं और टीम की कप्तानी के लिए तैयार भी। बाएं हाथ की कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव की लंबे समय के बाद टीम में वापसी हुई है। हालांकि यादव ने पिछले 6 महीने से किसी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में शिरकत नहीं की, फिर भी उम्मीद ये कि मध्य के ओवर में विकेट का टोटा वो दूर कर सकेंगे। वडोदरा के आक्रामक बल्लेबाज दीपक हुडा को भी वनडे टीम में जगह मिली है। इसके साथ ही अंडर 19 क्रिकेट से अपनी पहचान बनाने वाले लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी T20 सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुना गया है। बुमराह और शमी को रेस्ट मिला है, अश्विन ट्रीटमेंट के कारण सीरीज से बाहर हैं, वेंकटेश अय्यर को सिर्फ T20 में मौका दिया गया है, जयंत यादव को परीक्षा के लिए एक अवसर साउथ अफ्रीका में मिला लेकिन तकरीबन 5 साल बाद मिले इस मौके को वो नहीं भुना पाए और अब फिर टीम से बाहर हो गए। उधर वेस्टइंडीज ने भी अपनी टीम डिक्लेयर कर दी है। किमर रोच, रुमा बोनर और ब्रेंडन किंग को बुलाया गया है। किरण पोलार्ड टीम के कप्तान होंगे। टीम में निकोलस पूरन, डेनन ब्रेवो और जेसन होल्डर शामिल हैं। रॉजर हार्पर की जगह डेस्मन हेन्स अब वेस्टइंडीज के चीफ सेलेक्टर हैं। इस समय वेस्टइंडीज अपनी मेजबानी में इंग्लैंड के खिलाफ हो रही 5 T20 मैचेस की सीरीज में लीड कर रही है। उधर इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 12 और 13 फरवरी को होने वाले इस ऑक्शन में 1200 से ज्यादा प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले साल ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस इतिहास रचते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 करोड़ 25 लाख में बिके थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा। आईपीएल में इस बार से दो नई टीमें शामिल हुई हैं। लखनऊ का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया है। इस टीम ने लोकेश राहुल को पहले ही अपना कप्तान चुन लिया है। उन्हें 17 करोड़ की राशि दी गई है, साथ में 10 करोड़ में मार्कस स्टॉइनिस और 4 करोड़ में रवि बिश्नोई को सीधे शामिल किया है। इसी तरह अहमदाबाद ने भी हार्दिक पंड्या को 15 करोड़ में खरीदा है और अपना कप्तान भी बनाया है। टीम में राशिद खान 17 करोड़ और शुभमन गिल को 8 करोड़ की राशि दी गई है। इस बार जिन खिलाड़ियों पर खासतौर पर निगाहें रहेंगी उनमें डेविड वार्नर शामिल हैं, जिन्हें हैदराबाद ने पिछले सीजन ही रिलीज कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के ही मिचेल मार्श सीमित ओवरों के फॉर्मेट में बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाते हैं, उन्हें भी बेहतर कीमत मिलने के आसार है। पैट कमिंस भी केकेआर से रिलीज हो चुके हैं, उन पर भी फ्रेंचाइज की नजर होगी। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट और भारत के खिलाफ हालिया सीरीज में शतक लगाने वाले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक भी मोटी कीमत पर जा सकते हैं। इस बीच बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट की सबसे अहम प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी को दो चरणों में आयोजित करने का मन बनाया है। इस ट्रॉफी के मुकाबले पहले 13 जनवरी से शुरू होने थे, लेकिन उस दौरान कोरोना के मामले पीक पर होने की वजह से बोर्ड को इसे स्थगित करने पर मजबूर होना पड़ा। रणजी ट्रॉफी के अलावा बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट के टूर्नामेंट्स पर भी बैठक में चर्चा हुई। बीसीसीआई की नजर 27 मार्च से आईपीएल शुरू करने की है, ऐसे में एक चरण में रणजी ट्रॉफी का आयोजन संभव नहीं लगता। संभव है कि पहला चरण अगले महीने पूरा कर लिया जाए जबकि दूसरा चरण आईपीएल के बाद कराया जाए। जो भी हो, डोमेस्टिक क्रिकेट के रिवाइवल की खबर सुकून से भरी है, इसमें कोई शक नहीं। चलते चलते एक और बेहतरीन खबर, भारत की स्मृति मंधाना को 2021 का आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। उन्होंने दूसरी बार ये अवार्ड अपने नाम किया है। इससे पहले वो 2018 में भी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। मंधाना दो बार ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इससे पहले झूलन गोस्वामी ने एक बार ये अवार्ड 2007 में जीता था। इसके साथ ही हफ्ते भर की क्रिकेट गतिविधियों पर आधारित हमारे साप्ताहिक पॉडकास्ट का आज का सफर यहीं पर समाप्त हुआ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। संजय बैनर्जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।